हैं, तो ये पुस्तक जो समाधियां वृंदावन में है महानदी स्वामी ने लिखी है, इस पुस्तक से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जगदीश पंडित पूरे संसार के रक्षक हैं, पूरे संसार के रक्षक हैं, तो वे कृष्ण प्रेम के घने बादल हैं जो कि सबके ऊपर उस प्रेम की वर्षा करते हैं। जगदीश पंडित, ये चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है। जगदीश पंडित और इनके भाई थे महेश पंडित, ये जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही रहते थे। कहां पर? जगन्नाथ मिश्र के घर के पास रहते थे। कहां पर? हाँ, श्रीधाम मायापुर में है। और जगन्नाथ पंडित कौन है? जगन्नाथ मिश्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं। तो एक दिन एकादशी को जो बालक निमाई था उसने रोना शुरू किया। बालक निमाई कौन है? चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल लीला में है, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसे रोए कि चुप ही नहीं होते। इसके पहले वो कभी भी रो रहे हैं तो चुप कराने का बड़ा अच्छा उपाय था, उनका रोना बंद कराने का बड़ा अच्छा उपाय था। क्या था? हरि नाम कीर्तन। जैसे हरि नाम कीर्तन करो तो उनका रोना बंद, वो प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन एक ऐसी भी घटना हुई, वो एकादशी का दिन था और वो ऐसे रोए कि हरि नाम कीर्तन से भी चुप नहीं होते। एक विशेष उनका जो है भगवान का संदेश था कि एकादशी के दिन अन्न ना खाओ, इसलिए जो माला जाप करते हैं नियमित रूप से तो उनका फिर कर्तव्य होता है कि उसके बाद चार नियम का पालन करें और फिर एकादशी का व्रत करें, एकादशी को अन्न ना खाएं। तो ये विशेष जो है ना भगवान की लीला है शिक्षा देने के लिए, वो नाम कीर्तन से भी चुप नहीं होते हैं। तो वो तभी जो है ना मतलब चुप हुए जब उन्हें महाप्रसाद मिला जगदीश पंडित के घर का, जो विशेष रूप से बना था। तब निमाई ने जो है ना एक चमत्कार किया। जगदीश पंडित जो है अचानक देखते हैं कि जो बालक गौरांग है उसने सुंदर भगवान कृष्ण का रूप दिखलाया। कृष्ण का जो शरीर है वो नवीन मेघ के समान सुंदर है ना, बहुत सुंदर। और उनके शरीर के जो वस्त्र हैं वो विद्युत के समान पीले चमकीले वस्त्र हैं और मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप का दर्शन कराया। किसको? जगदीश पंडित को कराया। जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी चले गए, उन्होंने सन्यास ले लिया, 24 साल की अवस्था में सन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो फिर जगन्नाथपुरी में रहने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने जगदीश से कहा कि सहायता करो हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को फैलाने में। तो जगन्नाथ भगवान की आज्ञा लेकर के जगदीश पंडित ने जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो नदिया में वो ले जाकर के स्थापित किया उनको, और उनकी पूजा स्थापित की। उनका जो गांव है नवद्वीप के पास वो है यशोरा, तो यशोरा गांव में उन्होंने स्थापित किया। तो कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित का एक विशेष कार्य है, एक विशेष नाम है। ये जो है चंद्रहास नाम के नर्तक हैं कृष्ण की लीला में। कृष्ण की लीला हमेशा होती है कहां पर? गोलोक धाम में कृष्ण की नित्य लीला होती है। तो कृष्ण की नित्य लीला में ये जो है चंद्रहास नाम के नर्तक हैं। श्री जगदीश पंडित तिरो भाव तिथि महाभूत की। अब जीव गोस्वामी के बारे में इसमें काफी बातें लिखी हैं। जीव गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी गुरु परंपरा के, तो इनके बारे में मैं आपको सुना रहा हूं। श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी, इन दोनों के ये भतीजे हैं जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई भाई थे, बहुत बड़े आचार्य इस हाँ, गौड़ीय परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रत्यक्ष उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। कौन? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके भतीजे जीव गोस्वामी, आयोजन का तिरुभाव। तो बचपन से ही जीव गोस्वामी के शरीर में बहुत सुंदर महापुरुष के लक्षण थे। महापुरुष के लक्षण किसी किसी बच्चे में जन्म से होते हैं, तो इनके शरीर में जन्म से ही महापुरुष के लक्षण थे। कैसे? नेत्र कमल के समान सुंदर, नासिका ऊंची, और जो ललाट है वो चौड़ा, छाती भी चौड़ी और भुजाएं लंबी, और शरीर जो है प्रकाश पैदा करता है, बहुत तेजस्वी शरीर है, सुनहला शरीर प्रकाश पैदा करता था। तो बचपन से ही जो है ना, इन्होंने कृष्ण और बलराम के जो श्री विग्रह हैं उनकी पूजा शुरू कर दी, और शुद्ध भक्ति प्रदर्शित करते हुए ये जब उनकी पूजा करते थे तो अक्सर रोते थे, प्रेम से रोने लगते थे, प्रेम में। जब उनको वस्त्र धारण कराते, उनको चंदन लगाते, उनको फूल अर्पित करते, आभूषण पहनाते और बहुत स्वादिष्ट मिठाइयों का भोग लगाते, किसको? कृष्ण बलराम के विग्रह को। तो उसमें से कुछ वो लेते महाप्रसाद और अपने सहपाठियों को बांटते बचपन में ही। शुरू से ही जीव ने जो है दूसरे जीवों के प्रति दया दिखलाई। जीव जो है कृष्ण बलराम में इतने आसक्त थे कि जब सोते थे तो क्या करते थे, कृष्ण बलराम को अपनी छाती से लगा करके सोते थे, वो छोड़ते नहीं थे। कृष्ण बलराम को अपनी छाती में लगा करके तब सोते थे, वो उनके बिना सोते भी नहीं थे। जीव गोस्वामी इतनी आसक्ति थी कृष्ण बलराम में। उनके जो माता पिता हैं वो सोचते थे कि ये तो केवल खेलता है, लेकिन जो गांव के वासी थे वो बहुत प्रसन्न होते थे देख करके कि जीव का कृष्ण बलराम में कितना प्रेम है। अब पाठशाला में बड़ी जल्दी संस्कृत व्याकरण में निपुण हो गए, काव्य में और तर्क में, न्याय में, इन सब चीजों में निपुण हो गए जीव गोस्वामी। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत से उनके जीवन को भी जीवन प्राप्त हो गया, बचपन से ही श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई। कृष्ण कथा से जो है ना वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, कृष्ण कथा सुनते, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण के अलावा उनसे कोई और बात करे। वो बचपन में भी जो है ना इतने तेजस्वी थे कि उनसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कृष्ण के अलावा और कोई बातचीत करे, इतना इनका प्रभाव था। उन्होंने फिर नवद्वीप धाम की यात्रा की श्री नित्यानंद प्रभु के साथ। जब ये नवद्वीप धाम आए तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके परम धाम जा चुके थे, नित्यानंद प्रभु थे। तो नित्यानंद प्रभु ने इनको देखो कितनी कृपा करी इनके ऊपर, इनको स्वयं जो है ना नवद्वीप धाम के लीला स्थल दिखलाए, चैतन्य महाप्रभु की लीला के स्थान दिखलाए जीव गोस्वामी को। और फिर ये नित्यानंद प्रभु के आदेश से बनारस में गए और संस्कृत का अध्ययन किया, इसके बाद फिर वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में इनके चाचा, दो चाचा पहले से थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो ये भी वृंदावन में आ गए और बहुत ही विनम्रता पूर्वक सेवा करते थे रूप गोस्वामी की, उनके चरणों को धोते थे और उनकी हस्तलिपि तैयार करते थे, पांडुलिपि रूप गोस्वामी की, और उनकी पुस्तकों का जो है संपादन करते थे, और उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की। एक बार बड़े वृद्ध वैष्णव थे वल्लभाचार्य, उन्होंने रूप गोस्वामी के जो पुस्तक है उसमें कुछ उन्होंने समीक्षा की, रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसमें उन्होंने कुछ समीक्षा की वल्लभाचार्य ने, क्योंकि काफी वृद्ध थे उम्र में काफी वृद्ध थे, तो रूप गोस्वामी ने उनकी उस समीक्षा को स्वीकार कर लिया सम्मान के कारण। हालांकि रूप गोस्वामी की पुस्तक में कोई गलती नहीं थी, रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत के साथी हृदय वर्धते तावत भक्ति रसस्य कथम उद्भवो भवेत्, कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना ये पिशाची है हृदय में रहती है, तब तक भक्ति के रस का जो उदय है वो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने तो पिशाची कहा है किसको, भुक्ति की कामना और मुक्ति की कामना को पिशाची कहा है। लेकिन वल्लभाचार्य ने यह मान लिया कि उन्होंने भुक्ति और मुक्ति को पिशाची कहा है, तो उन्होंने उनको जो है मतलब सलाह दी कि इसको सुधार करो। तो रूप गोस्वामी ने कुछ भी उनका विरोध नहीं किया और स्वीकार कर लिया उनका संशोधन। लेकिन जीव गोस्वामी पास में खड़े थे, तो अपने गुरु के सामने तो कुछ नहीं बोल सके, अपने गुरु के पक्ष में वो कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उनके गुरु विनम्र थे वल्लभाचार्य जी पर भी। लेकिन कुछ देर के बाद जब रूप गोस्वामी ने आदेश दिया जीव गोस्वामी को कि इनको ले जाओ जमुना जी में स्नान कराओ, तो वल्लभाचार्य के कपड़े अपने लेकर के जब स्नान कराने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि जो आपने सुधार किया है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से गलती नहीं है। तो वल्लभाचार्य भी इतने उदार थे कि जीव गोस्वामी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया, और बाद में आकर के रूप गोस्वामी से कहा कि हाँ हाँ जो मैंने सुधार किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी पुस्तक में कोई गलती नहीं है, और ये आपका जो शिष्य है ये बड़ा बुद्धिमान है, इसने मुझे सुझाव दिया और मुझे समझ में आ गया कि सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रूप गोस्वामी ने उनके सामने तो बात मान ली। जब वल्लभाचार्य चले गए तो फिर उन्होंने जो है जीव गोस्वामी को डांटा। अच्छा, अब यहाँ लिखा है कि तभी बहुत जो है छोटे थे जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य के तुलना में, लेकिन उन्होंने बड़े निर्भीकता पूर्वक अपने गुरु के पक्ष में वल्लभाचार्य को बोला। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा कि तो अब तुम वृंदावन में मत रहो, तुम वृंदावन छोड़ दो। देखा, जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के पक्ष में ही बोला था, और रूप गोस्वामी इतने गुस्सा हो गए कि जीव गोस्वामी को कहते हैं कि तुम वृंदावन में मत रहो, जाओ यहां से। अब जीव गोस्वामी बड़े दुखी होकर के अपने जीवन की आशा भी उन्होंने छोड़ दी कि गुरु ने अगर त्याग दिया तो अब जीने से क्या फायदा है, इसलिए वो यमुना जी के तट पर नंद घाट में जो है एक मगरमच्छ का बनाया हुआ एक गड्ढा था, तो वहां तो खैर पानी नहीं था, उसी गड्ढे में वो बैठे रहते और भजन करते रहते। नंद घाट जो है रूप गोस्वामी के भजन कुटीर से 45 मिनट की दूरी पर है, अगर पैदल चलें रूप गोस्वामी के भजन कुटीर से तो 45 मिनट में नंद घाट पहुंच जाएंगे। तो वहां पर जीव गोस्वामी आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा वृंदावन से बाहर जाओ, तो वो जो है वृंदावन का समझो कि वो सीमा है, तो वृंदावन की सीमा के बाहर वो आ गए। तो और यहां जो है वो भजन करते थे। जीव गोस्वामी उस समय क्या करते थे, आटा जो है किसी कहीं से मांग लेते थे और जमुना जी के पानी में उसको घोल करके और पी जाते थे। तो बहुत ज्यादा जो है फिर बाद में उनका शरीर अस्वस्थ हो गया और सनातन गोस्वामी को पता चला, तो सनातन गोस्वामी फिर जीव गोस्वामी को ले आए दोबारा रूप गोस्वामी की सेवा में। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार समीक्षा की थी गुरु शिष्य की इस लीला में। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को दूर कर दिया हमें सिखाने के लिए, आज के जो भक्त हैं उनको शिक्षा देने के लिए। तो ये इसलिए नहीं किया था कि श्री जीव गोस्वामी को शिक्षा देना चाहते थे या उनको दंड देना चाहते थे, नहीं, क्योंकि जीव गोस्वामी भी कृष्ण की लीला की मंजरी हैं और रूप गोस्वामी भी मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी भी मंजरी हैं, ये तो सब नित्य सिद्ध हैं, इन्हें थोड़ी कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन ये जो लीला करी है रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को जो दूर किया था अपने पास से। तो हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये किया था, सब जीवों को शिक्षा देने के लिए, जो कि उन्होंने उपदेशामृत में लिखा है। उपदेशामृत में जीव रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। हर समय भक्त को जो है अपनी वाणी के वेग को नियंत्रित करना चाहिए। वाचो वेगम, वाचो वेगम का मतलब बोलने की, हमेशा बोलने की इच्छा होती है, किसी बात में तुरंत जवाब देने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक सुन लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है बोलना नहीं चाहिए, और मुंह नहीं ललाना चाहिए, जवान नहीं ललाना चाहिए ज्यादा। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी को शिक्षा दी। ये तो जीव गोस्वामी भी बहस कर सकते थे कि आप मुझे डांट रहे हैं, मैंने तो आपका ही पक्ष लिया, मैंने क्या गलत कहा। वल्लभाचार्य भी तो प्रसन्न हुए, मैंने उनको जो कुछ बताया है, आपकी पुस्तक में कोई गलती नहीं थी, उन्होंने आपकी पुस्तक में गलती निकाली, वो भी तर्क कर सकते थे। जीव गोस्वामी ने कोई तर्क नहीं किया, रूप गोस्वामी ने उनको डांटा है तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहां से, तो चले गए जीव गोस्वामी। इस कितनी जो है ना उनका नियंत्रण है अपनी जिह्वा में। लेकिन यहां पर होता क्या है कि अगर कोई कुछ बताता है हमें, सिखाता है, तो कुछ गलती बताता है, तो गलती ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी दबाने के लिए और झूठ बोलते हैं और बहस करते हैं और बहस करते हैं। जहां गलती नहीं है वहां पर भी वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं जीव गोस्वामी, और कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। और यहां ये होता है कि हम गलती पे गलती करते जाते हैं और फिर भी बहस करते हैं कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए हर समय भक्तों को जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए, तिनके से भी ज्यादा नीच होकर के। जो अपने से सीनियर भक्त हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके सामने तिनके से भी ज्यादा नीच होकर के सहन करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। फिर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामियों के तिरोभाव के बाद जीव गोस्वामी ही गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बने। जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप के और वृंदावन के और जगन्नाथपुरी के, सभी वैष्णवों के वे क्या बने, संप्रदाय आचार्य। संप्रदाय आचार्य का मतलब यह है कि जितने भी वैष्णव हैं वो कुछ भी अगर ग्रंथ लिख रहे हैं तो जीव गोस्वामी को दिखलाएंगे कि हमारे संप्रदाय के अनुसार है कि नहीं है, तो वो जो है प्रामाणिक आचार्य थे इस गौड़ी संप्रदाय के। और तीन स्थानों में गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव रहते थे, एक तो नवदीप धाम, दूसरा वृंदावन धाम और तीसरा जगन्नाथपुरी। तो तीनों स्थानों के जो वैष्णव हैं वो जीव गोस्वामी को ही प्रमाण मानते थे, कोई भी अगर उन्हें संदेह हो, शंका हो, प्रश्न हो, तो जीव गोस्वामी से ही वो सब अपनी शंका संदेह दूर करते थे। यद्यपि इनसे कोई विरोध नहीं करते थे, परंतु ये हमेशा सब जीवों के प्रति बहुत विनम्र सेवा की भावना रखते थे। जब भी बंगाली वैष्णव बंगाल से वृंदावन आते थे तो वे बहुत प्रेम से इनका स्वागत करते थे वैष्णवों का, और उनके प्रसाद की व्यवस्था और उनके आराम पूर्वक रहने की व्यवस्था करते थे, और यहां तक कि ब्रजमंडल परिक्रमा में भी उनको मार्गदर्शन करते थे, परिक्रमा कराते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे और कृष्ण की लीला की स्थलियां दिखलाते थे जीव गोस्वामी। संस्कृत के तो महान महान विद्वान थे जीव गोस्वामी। संस्कृत के श्लोक जो है ना, जब वो लिखते थे जीव गोस्वामी, जब संस्कृत के श्लोक लिखते थे तो श्लोक जो है उनको बनाने में देर नहीं लगती थी, उनके मन में ही श्लोक बन जाते थे, अपने मन में ही उनके श्लोक बन जाते थे। और जब वो लिखते थे श्लोक, जब लिखते थे तो जैसे पत्थर की लकीर हो, उसमें कुछ भी फिर अदल बदल नहीं होता था। उन्होंने एक बार उनकी कलम चल गई तो चल गई, उसमें कोई फिर गलती होती नहीं थी उनके श्लोकों में। और उन्होंने लिख दिया, मतलब मानो कि धातु के बिना पत्र में, जैसे मान लो लिख दिया हो, ताड़ पत्र में लिखते थे जैसे धातु के ऊपर लिखा जाता है वैसे, और इनकी जो है ना लेख में, लेखनी में किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी कि दोबारा लिखा जाए या उसको सुधारा जाए, चेक किया जाए, नहीं। और प्रत्येक श्लोक जो है बिल्कुल पूर्ण छंद के साथ में बंधा रहता था, प्रत्येक श्लोक की बिल्कुल सही सही रचना होती थी और अर्थ भी जो है बिल्कुल स्पष्ट होता था। तो ये सबसे बड़े भारतीय इतिहास में दार्शनिक हुए हैं, इनके समान ना तो कोई दार्शनिक हुआ है आज तक, ना है और ना होगा आगे भी। संस्कृत के जो उस समकालीन जो विद्वान थे वो उनको कहते थे कि सबसे महान विद्वान है ये संस्कृत के आज तक विश्व के इतिहास में अगर कोई हुआ है तो जीव गोस्वामी हुए हैं। जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे छह गोस्वामियों में, परंतु सबसे बड़े ये लेखक हैं। उन्होंने हाफ मिलियन संस्कृत वर्सेस, हाफ मिलियन का मतलब कितना हुआ, 5 लाख, 5 लाख श्लोक लिखे हैं संस्कृत के कुल मिलाकर के। उनकी पुस्तकें लगभग 25 पुस्तकें हैं, लेकिन 5 लाख श्लोक उन्होंने संस्कृत के लिखे हैं इन पुस्तकों में अपने जीवन काल में, जबकि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर के 4.5 लाख है। आप सोचो इन्होंने 4.5 लाख, 18 पुराणों में जितने श्लोक हैं उससे ज्यादा श्लोक लिखे हैं, 5 लाख श्लोक लिखे हैं। और इनके श्लोक जितना, इनके जितने ग्रंथ हैं वो सब कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुणगान पर है, जबकि 18 पुराणों में तो कृष्ण के अलावा और भी दूसरे विषयों का भी वर्णन है, जिसमें कि मनुष्य के जीवन का जो है ना परम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो कुछ भी लिखा है सब कृष्ण के बारे में ही लिखा है। तो लगभग 25 पुस्तकें लिखी हैं और 5 लाख श्लोक लिखे हैं। उनकी पुस्तकें सिद्ध करती हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है ये वैदिक ज्ञान का सार है और समस्त धर्म की पूर्णता है। इनकी पुस्तक एक तो है गोपाल चंपू, और दूसरा है षट संदर्भ, और तीसरा हरिनाम व्याकरण। ये तीन जो है ना बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। संदर्भों में अच्छी प्रकार से स्थापित हुआ है श्रीमद् भागवत का जो परम सत्य है, और उनसे पुष्ट होता है भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, स्वयं भगवान हैं, और हर वस्तु के कारण हैं, सब अवतारों के भी स्रोत हैं। कोई व्यक्ति जो बड़ी सावधानी से इन पुस्तकों को पढ़ता है तो कृष्ण का भक्त बन जाएगा। जीव गोस्वामी का जो नाम है जीव, ये बड़ा रोचक है। अगर हम भागवत के एक श्लोक के प्रकाश में अगर देखें तो जीव गोस्वामी का जो नाम जीव जो है बड़ा रोचक है। भागवतम का एक श्लोक है, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम जीवो जीवस्य जीवनम, भागवतम का एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। कैसे, मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, इस प्रकार से जिंदा रहते हैं। ये भौतिक संसार इस प्रकार से बना हुआ है कि जीव जीव से जीवनम, कि एक जीव को दूसरे जीव खाते हैं, इस प्रकार से उनके जीवन की रक्षा होती है। तो एक जीवन को खत्म करके ही दूसरा जीवन अपना चलाता है, चलता है। ये भौतिक संसार इस प्रकार का है। हस्तानि सहस्ताना, तो जिनके हाथ नहीं है, जिन जीवों के हाथ नहीं है वे भोजन होते हैं उनके, जिनके पास हाथ है। जो हाथ वाले लोग हैं तो उनको खाते हैं जिनके हाथ नहीं है। अपदान चतुष्पदाम, और जिनके पैर नहीं है, है ना, उनको खाते हैं वे लोग जिनके चार पैर हैं। चार पैर वाले जो जीव हैं उन जीवों को खाते हैं जिनके पैर नहीं है, है ना। जीवो जीव से जीवनम, जो पशु हैं बिना हाथ वाले, वे भोजन है उनके जिनके हाथ हैं, और जिनके पैर नहीं है वे भोजन है उनके जिनके चार पैर हैं। हर जगह एक जीव दूसरे जीवन का, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। लेकिन जीव का दूसरा अर्थ यह है कि जीवो जीव से जीवनम, इसका अर्थ यह भी है कि जीव जीव का जीवन है, मतलब जीव गोस्वामी सब जीवों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। जीवो जीव से जीवनम, अगर जीव का अर्थ जो है जीव गोस्वामी मान लिया जाए तो जीव गोस्वामी ने ही सब जीवों को जीवन प्रदान किया है। कैसे? अपने ये ग्रंथ जो प्रदान किए हैं उनसे जीव जीवन प्राप्त हुआ है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो जीव को सामने दिया है अपने 25 पुस्तकों में, ये सब भक्तों को जीवन प्रदान करती हैं। तो जीव का दूसरा नाम है जीवका, जीवका। जो व्यक्ति दूसरे जीवों को जो है दिव्य ध्वनि बुलवाए, श्री जीव गोस्वामी ने ऐसा किया है। ये जो श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्भुत अर्थ निकाला है अपने भागवत तात्पर्यों में और सत संदर्भों में, जो व्यक्ति जीव के स्वभाव को विस्तार करे और भगवान के साथ संबंध स्थापित कराए, और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कराए, तो वो जीव जीवक कहलाता है। जीव तो जीव गोस्वामी में ये गुण है। तो जीव गोस्वामी की जो है जो गोपाल चंपू नामक एक पुस्तक है उसमें से बड़ा सुंदर कुछ इसमें निकाला है, कुछ बातें निकाली हैं, उसको आप सुनिए। गोपाल चंपू जो है बड़ा सुंदर ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा विस्तृत लिखा हुआ है। तो वृंदावन की जो लीलाएं हैं भगवान राधा दामोदर की, बड़ी सुंदर उसमें वर्णन है। तो ये जो लीला इसमें लिखी है ये गोपाल चंपू से निकाली गई है, उस समय की जब गोवर्धन पूजा हुई, तो गोवर्धन पूजा के समय भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई, और गोवर्धन से जो है स्वयं ही कृष्ण एक बहुत बड़ा रूप धारण करके निकल आए, ये कहते हुए कि मैं गिरिराज हूं। थे तो स्वयं कृष्ण अपने छोटे रूप में ब्रजवासियों दिखाते हैं कि प्रणाम करो प्रणाम करो, ये गिरिराज महाराज है। और ब्रजवासी नहीं समझते हैं कि ये कृष्ण ही ने जो ना इतना बड़ा रूप धारण किया हुआ है, और यहाँ बालक के रूप में कह रहे हैं सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो प्रणाम करो, देखो कितनी कृपा कर रहे हैं गिरिराज महाराज आ गए दर्शन देने के लिए। तो इसमें लिखा है कि वो जो गोवर्धन पर्वत से बहुत विशाल शरीर धारण करके जब वो गिरिराज महाराज निकले, तो जितने ब्रजवासी हैं और कृष्ण सहित सब उनको प्रणाम करते हैं, और वो आकाश को छू रहे थे इतना बड़ा शरीर था, उनको सब प्रणाम करते हैं ब्रजवासी लोग। और श्री कृष्ण जो है अपने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रजवासियों को दिखाते कि कैसे हाथ जोड़ना चाहिए कैसे, तो कृष्ण स्वयं दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गोवर्धन के सामने। अच्छा, और गोवर्धन जो गिरिराज महाराज हैं वो बोले कि तुम्हारा जितना भी भोजन तुमने मुझे भोग लगाया है वो मैं सब खाऊंगा। वो अन्नकूट जो है जो किया था उन लोगों ने, तो एक मतलब पर्वत जैसा जो ना सब भोजन इकट्ठा किया था, सब प्रकार के व्यंजन बनाए, एक बड़ा पर्वत जैसा था, तो उसको जो है गिरिराज महाराज खाना शुरू कर देते हैं। उतना सब भोजन उन्होंने जब खाया, तो फिर पानी पानी तो रखा नहीं था, और पानी इतना लाते थे कहां से, तो आसपास के जितने कुंड हैं सब सुखा दिए उन्होंने पानी की करके, पानी उन्होंने मांगा नहीं, पानी कोई देता भी नहीं उनको, भोजन तो इतना सब था तो सब खा लिया, जितने कुंड थे सब सुखा दिए उन्होंने पी करके, पानी पी लिया। इसके बाद फिर जो है अपने दाएं हाथ से जो है जितना भी भोजन था ब्रजवासियों का उन्होंने खाया, और फिर अपने बाएं हाथ की उंगलियों को चाट रहे हैं, और जो ग्वाले थे वो भागे देख करके हैं कि अब हमको खाएंगे क्या, अब इस जितना भी भोजन सब खा लिया, अब हमको भी खाएंगे क्या। सब ब्रजवासी भागने लगे उनको देख करके। हाँ, और ये जो गोवर्धन महाराज हैं वो चिल्ला रहे थे अन्योर 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 अन्योर, मतलब और लाओ और लाओ। अब जितना सब था भोजन तो सब खा लिया, अब चिल्ला रहे और लाओ और लाओ। अब और कहां से लाओ। तो फिर ये बड़ी सुंदर लीला है। तो ये तो थोड़ा सा उन्होंने एक नमूना दिखाने के लिए बताई है ये लीला। तो आचार्य रानी जाहनामा देवी की प्रार्थना पर श्री जीव गोस्वामी ने जो है श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को 6 गोस्वामियों के जो पुस्तकें हैं उनको वृंदावन से बंगाल में भेजा। उन्होंने 3 भक्तों को नियुक्त किया। जो 6 गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे ये सब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ थे 6 गोस्वामियों के। और उन दिनों जो छपाई नहीं होती थी किताबों की, तो सोचो कि पुस्तकें कितनी कीमती थी वो पुस्तकें। तो ये हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनको जो संदूकों में भर भर के जीव गोस्वामी ने इन पुस्तकों के प्रचार के लिए, पुस्तकों के वितरण के लिए, कि इन पुस्तकों का जो है ज्यादा से ज्यादा उसकी मतलब प्रतियां बनाई जाएं, लिखी जाएं, छप नहीं सकते थे, छपाई मशीन नहीं थी उन दिनों, तो हाथ से लिखना है। तो गौर देश में उन्होंने भेजा गोस्वामियों के ग्रंथों को, बंगाल में भेजा, और उन्होंने फिर बंगाली में उनका अनुवाद लिखा। ये संस्कृत ग्रंथ है, बंगाली में अनुवाद लिखा वहां, और फिर पूरे बंगाल में वो ग्रंथ बांटे गए, उड़ीसा में भी बांटे गए। और उन तीनों भक्तों ने बहुत प्रचार किया और सैकड़ों भक्तों को दीक्षा दी। 1542 में श्री जीव गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर भगवान की स्थापना की सेवा कुंज में वृंदावन में। इनकी समाधि उसी मंदिर के अहाते में है। और जीव गोस्वामी भगवान की नित्य लीला में जानते कौन है? जीव गोस्वामी बिलास मंजरी हैं, बिलास मंजरी हैं जीव गोस्वामी। तो ये बंगाली है तो मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अंग्रेजी के अक्षरों में बंगाली लिखी हुई है। तो वैसे तो ना तो हम बंगाली पढ़ने वाले हैं ना अंग्रेजी में इतना ज़्यादा निपुण हैं, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और इसका अंग्रेजी में अर्थ भी है, उसको हिंदी में बताऊंगा। श्री जीव गोसाई मोराम प्रेमा रत्न सागरम ओहे प्रभु कृपा कर मोरे। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण प्रेम रूपी रत्न के समुद्र हैं, हे प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा करो। आज के दिन हमें कृपा मांगनी थी जीव गोस्वामी से। मोईता पामर जने बड़े साधे करे मने तो या गुण गाए बारे तारे। मैं सबसे ज्यादा पतित हूं परंतु मैं तुम्हारा गुणगान करना चाहता हूं और इसी से ही मैं माया के बंधन से छूट सकूंगा। स्त्री रूप स्त्री सनातन अनुपम समोध्यन राम पद दृढ़ जार मती। तो हे जीव गोस्वामी आप अनुपम के पुत्र हो जो कि भगवान राम के परम भक्त थे। अनुपम जो है श्री सनातन और रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे। हे जीव तुम जानते हो सभी शास्त्रों को और तुमने श्री रूप और रूप गोस्वामी के जो पुस्तकें हैं उनका आंतरिक अर्थ भी प्रकट कर दिया है। कहारा तना है जीवन सर्व शास्त्र सुपंडित प्रकाशील श्री रूप है संहति। वैराग्य जन्मीला माने राज्य छाने से छने चलीला श्री नव द्वीप पुरी। अपने मन को जो है ना विरक्ति से भर करके तुमने तुरंत ही सब कुछ त्याग दिया और नवद्वीप धाम चले आए हैं। प्रभु नित्यानंद देखी छल छल करी आँखी पड़ीला चरण युगे धरी। भगवान नित्यानंद का जैसे तुमने दर्शन किया तो तुम्हारे नेत्र कमलों से अश्रु बहने लगे और तुम उनके चरणों में गिर पड़े। मस्तक के चरण दिया दुई बाहु पसरिया उठाइया करी लेने कोले। भगवान नित्यानंद ने अपने चरण कमल तुम्हारे सिर में रख दिए और तब उन्होंने तुम्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया। इसके बाद प्रेम गद गद हैया दैन्य भाव प्रकाशिया कांडिते कांडिते किछु बले। कृष्ण प्रेम में भर करके तुम्हारा शरीर जो है कांपने लगा और भाव के लक्षण प्रकट हो गए। ऐसी अवस्था में तुमने ये कहा, तुमने कहा नित्यानंद प्रभु से, क्या कहा? प्रभु नित्यानंद नाम जग तारे परित्राण सब जीव आनंद करीला। नित्यानंद प्रभु ये जो तुम्हारा नाम है ये पूरे संसार का उद्धार करने वाला है और सब जीवों को आनंद प्रदान करने वाला है। मोहे न पतित जाने कृपा कैला निजय गुणे ब्रह्मारे दुर्लभ है धन दीला। तुमने अपनी कृपा दी है, सब जीवों को जितने पतित हैं और जो अपने गुणों को प्रकट किया है पतितों के ऊपर, ऐसी कृपा बड़ी दुर्लभ है, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं प्राप्त कर पाते तुम्हारी कृपा को। महाप्रभु तो मार्ग ने दिया छेन दत्त भूमे शीघ्र तुम्हें जाहो वृंदावन। भगवान नित्यानंद ने उत्तर दिया, श्रीमन महाप्रभु ने विशेष जो जमीन है तुम्हारे परिवार को दी है, इसलिए तुम तुरंत ही जाओ वृंदावन की भूमि में। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कहा कि तुम्हारे परिवार को विशेष भूमि दी है चैतन्य महाप्रभु ने, कहा कि वृंदावन की, तो जाओ तुम वृंदावन में जाओ। श्रीमो खेरे आज्ञा पैया आनंद हई आहिया ब्रजे पोरे करीला गमन। तो नित्यानंद प्रभु के इन शब्दों को सुन करके बहुत आनंदित होकर के तुम वृंदावन आ गए। कृष्ण नाम सदा मुखे नेत्र जल बहे बुके यही रूपे पथे चली जाया। वृंदावन की ओर तब जब तुम जा रहे थे तो तुम निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए और खूब क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, रोते रोते जा रहे थे। प्रभु रूप सनातन करे पाव दर्शन प्राण मोरा रख महाशय। निरंतर तुम पुकारते रहे, हे रूप हे सनातन मैं कब तुम्हारा दर्शन करूंगा, मुझे आप कृपा करके जीवन प्रदान करो। कभू करो जल पान कभू चाना चरवण कत दिन मथुरा पाईला। कुछ दिन तक तो तुमने केवल पानी पिया, रास्ते में कितना दूर है वो, पैदल चल रहे हैं, कहां से कहां तक? जगन्नाथपुरी से वृंदावन पैदल चल रहे हैं। कितने दिन तक तो पानी ही पिया या कभी कभी चना चमाए और आखिर मथुरा में तुम पहुंचे। इसके बाद देखी शोभा मधुपुरी प्रेमे पड़ी घुरी घुरी धीरे धीरे विश्रांति आइला मोरे। तुमने बहुत प्रेम पूर्वक मथुरा का दर्शन किया और धीरे धीरे पहुंचे विश्राम घाट में। जमुना ते कैला स्नान करी किछु जल पान से रात्रे तहां कैला बास। तुमने यमुना जी में स्नान किया और शुद्ध उसका जल पिया और फिर उसकी बालू में सोए। इसके बाद प्राते आईला वृंदावने, देखी रूप सनातने, प्रभु सब पुराईला आशन। अगले दिन सवेरे तुम वृंदावन आए और रूप और सनातन गोस्वामियों का दर्शन करके तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। श्री गोपाल चंपू नाम ग्रंथ कैला अनुपम, ब्रज नित्य लीला रस पूरा। तुमने श्री गोपाल चंपू लिखा जिसमें पूर्ण रूप से ब्रज के अमृत के समान लीलाओं का वर्णन हुआ है। सत संदर्भ आदि करी जहां ते सिद्धांत भारी, पढ़ी सुनी भक्त हैला सुर। सत संदर्भों की रचना की तुमने और बहुत सी पुस्तकें तुमने लिखी जिनमें पूरा जो ना व्याख्या है गौड़ी वैष्णव सिद्धांत की। कोई व्यक्ति उनको पढ़ता है या इन पुस्तकों को सुनता है तो वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। उज्ज्वल प्रेमेरे तनु रसे निर्मल जानो, भाव अलंकृत सब अंग। तुम्हारा शरीर सात्विक भावों से अलंकृत है, राधा दामोदर के प्रति जो शुद्ध प्रेम है उसके लक्षण प्रकट होते हैं। पढ़ते श्री भागवते धैर्य ना धारे चित्त, सात्विके व्यापित सब अंग। तुम्हारे शरीर से जो है ना आध्यात्मिक आनंद ऐसे निकलता है, आध्यात्मिक आनंद की किरणें निकलती हैं तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे मन में जो है ना फिर अधीर हो जाता है जब तुम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हो। जुगल भजन सारे विलासाए सदा यारे, वृंदावन बिहारे सदाई। तुम हमेशा दिव्य युगल की पूजा करते हो राधा दामोदर की और उनके जो दिव्य लीलाएं हैं वृंदावन की कुंजों में सेवा करते हो। गोलोक संपुट कारी ताहाते से प्रेम धरे, संवारण करी लागो साई। और तुम हमेशा गोलोक धाम का ध्यान करते हो, राधा दामोदर की जो प्रेम लीलाएं हैं उनका ध्यान करते हो। मोई आती मुदा माती, मोई आती मूढ़ माती, तो मा बेनु राही गति, तो मा बेनु नाही गति, श्री जीव जीवन प्राण धन। हे श्री जीव प्रभु, ये जो मूर्ख दुष्ट जो है तुम्हारी कृपा के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, तुम ही मेरे जीवन को जीवन दे सकते हो। बहु जन्म पुण्यकारी दुर्लभ जन्म धारी, पाई अच्छी स्त्री जीव चरण। कई जन्मों तक पुण्य को इकट्ठा करके मुझे ये दुर्लभ जन्म प्राप्त हुआ है जिसमें स्त्री जीव के चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हुई है। स्त्री जीव करुणा सिंधु स्पर्श तारा एक बिंदु, प्रेम रत्न पाबारे लोगिया। श्री जीव के जो कृपा का समुद्र है उसका एक बूंद प्राप्त करके मुझे प्रेम का रत्न प्राप्त हो गया, राधा कृष्ण के प्रेम का शुद्ध प्रेम का रत्न प्राप्त हो गया। कहे रघुनाथ दास तू या अनुगत आशय, राख मोरे पद छाया दिया। रघुनाथ दास पुकार रहे हैं हे स्त्री जीव गोसाई, मेरी एकमात्र इच्छा है कि तुम्हारे चरणों का अनुयायी बनूं, कृपा करके मेरी रक्षा करो और अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करो। चलो जीव गोस्वामी तेरे भाव तिथि महामहोत्सव की। अभी जीव गोस्वामी के बारे में हमने कई बातें बताई हैं, तो अब मैं प्रश्न करूंगा। या किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। मंजरी कौन है? मंजरी का मतलब क्या है? इनका अच्छा प्रश्न है। मंजरी का मतलब क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण की जो प्रेम लीला है, उसमें तीन प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक तो मंजरी हैं, दूसरी सखी हैं और तीसरी गोपी हैं। जो गोपियां हैं तो इनका संबंध सीधे कृष्ण से होता है ना, और एक दूसरे से उनका संबंध नहीं रहता है, एक दूसरे से स्पर्धा रहती है। और प्रत्येक गोपी अपना अपना संबंध बनाना चाहती है ना। और गोपियों के अलग अलग यूथ हैं, मिथिला पूर्ववासिनी गोपियां, उनका अलग यूथ है ना। तो वो कृष्ण से मिलती हैं, वो अपना कृष्ण से संबंध बनाती हैं। अयोध्या पूर्ववासिनी गोपियां अलग हैं है ना, और पुलिंद कन्या गोपियां वो अलग हैं। इस प्रकार की 100 प्रकार के अलग अलग गोपियों के यूथ हैं है ना, जिनमें राधा रानी का भी एक अलग यूथ है। तो गोपियां जो है मतलब वो होती हैं जो सीधे कृष्ण से अपना संबंध बनाती हैं, और दूसरी गोपियों से वो स्पर्धा रखती हैं, कंपटीशन प्रतियोगिता रहती है एक दूसरे से, तो वो गोपियां कहलाती हैं। और सखियां क्या होती हैं? सखियां होती हैं जिनका खाली कृष्ण से संबंध नहीं होता है, वो राधा और कृष्ण दोनों से संबंध रखती हैं। राधा को कृष्ण से मिलाना, कृष्ण को राधा से मिलाना है? और जो है व्यवस्था करना, मिलन की व्यवस्था करना, संदेश पहुंचाना, इनका उनको, उनका इनको, तो ये सखियां कहलाती हैं। तो जिनमें 8 सखियां प्रसिद्ध हैं, ललिता विशाखा यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं ललिता विशाखा। इन 8 सखियां जो है मतलब मुख्य हैं कृष्ण की। और आप जानते हैं और बता सकते हैं नाम ललिता विशाखा के अलावा? तुंग विद्या, चंपक लता, रंग देवी, सुदेवी, इस प्रकार से 8 सखियां हैं। तो सखियां समझ गए कौन है? जो राधा और कृष्ण दोनों से संबंध बनाती हैं और दोनों से मतलब दोनों का मेल कराती हैं। अगर झगड़ा हो जाता है तो वो फिर जो है ना उनको समझाती हैं। कभी राधा रानी को समझाती हैं कि तुम विनम्र हो जाओ नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कृष्ण को समझाती हैं कि तुम भी झुक जाओ नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगी। तो इसलिए सखियों का कार्य होता है सिखाना, समझाना, मिलाना, सखियां हैं। ये मंजरियां जो हैं बिल्कुल अलग हैं। जो मंजरियां होती हैं उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, खाली राधा रानी से उनका संबंध होता है, राधा रानी की सेवा करना बस। मंजरियां कम उम्र की हैं, जो कि मतलब यौवन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, यौवन अवस्था से भी पहले की अवस्था है उनकी, तो वे जो है ना केवल राधा रानी की सेवा करती हैं। और राधा रानी से बहुत उनका जो है ना घनिष्ठ संबंध है, और राधा रानी से घनिष्ठ संबंध होने के कारण वो कृष्ण से सबसे ज्यादा निकट होती हैं। इसलिए राधा कृष्ण के जो है ना जो बहुत घनिष्ठ लीलाएं हैं वो भी जो है ना उनको पता चलती हैं, वो देखती हैं। तो मंजरियां जो है बहुत सी हैं मंजरियां, उनमें से 8 मंजरियां प्रमुख हैं है ना। तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं ना, और सनातन गोस्वामी भी लवंग नयन मंजरी, नयन मंजरी है, लवंग मंजरी, लवंग मंजरी है सनातन गोस्वामी है ना। तो इस तरह से जो है ना मंजरियां जो है ना विशेष होती हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का?
अभी आपने जीव गोस्वामी के बारे में जो गाके सुनाया
है, उनका प्रश्न है कि जो हमने जीव गोस्वामी का सूचक कीर्तन सुनाया है वो कौन से रघुनाथ दास गोस्वामी? रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही है, दो नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है नहीं, उम्र में बड़े नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी। उम्र में हाँ, उम्र में हो सकता बड़े भी हों। हैं जीव गोस्वामी से बड़े हैं? अच्छा, जीव गोस्वामी से बड़े हैं लेकिन उनके सम्मान की भावना है जीव गोस्वामी के प्रति। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूं, जीव गोस्वामी किसके पुत्र हैं? अनुपम गोस्वामी। अनुपम गोस्वामी किसके भाई हैं? हाँ, सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, उनसे छोटे रूप गोस्वामी, उनसे छोटे अनुपम। तो अनुपम की विशेषता क्या थी? है? राम भक्त थे वो, अनुपम राम भक्त थे। और जीव गोस्वामी कृष्ण बलराम से जो है बहुत प्रेम करते थे बचपन में ही। तो क्या मतलब विशेषता थी उनकी जो कृष्ण बलराम से प्रेम करते थे? किस प्रकार से वो आचरण करते थे? सोते थे तो कृष्ण बलराम को अपने सीने से लगा करके सोते थे। सोते समय भी छोड़ते नहीं थे कृष्ण बलराम को। और उनके माँ बाप सोचते थे कि ये बच्चों की तरह खेल रहा है, लेकिन वो क्या करते थे? कृष्ण बलराम की पूजा करते थे और भोग लगाते थे, फिर अपने साथियों को बांटते थे, है ना। और एक विशेष उनका तेज था, जीव गोस्वामी में एक विशेष तेज था जिससे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्या करने की? कृष्ण के अलावा दूसरी बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी जीव गोस्वामी से। फिर जीव गोस्वामी जब अपने गांव को छोड़कर के गए तो सबसे पहले कहां पर गए? हैं? अपने गांव से गए कहां पर? नहीं नहीं, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में किससे मिले? नित्यानंद प्रभु से मिले। और नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को विशेष कृपा, जीव गोस्वामी पर विशेष कृपा करी। उनको सब स्थान दिखलाए, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं के स्थान दिखाए जगन्नाथपुरी में। और उसके बाद फिर उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? वृंदावन जाने के लिए। नित्यानंद प्रभु के आदेश से पहले वो बनारस गए, बनारस में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, इसके बाद वृंदावन में आए। वृंदावन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले। फिर एक विशेष शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के साथ कुछ अन्याय किया। क्या किया? वृंदावन से बाहर निकलने के लिए कह दिया। जीव गोस्वामी की कोई गलती नहीं थी। जीव गोस्वामी ने क्या किया था? वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी की पुस्तक में कुछ सुधार किया और जीव गोस्वामी ने समर्थन किया रूप गोस्वामी की पुस्तक का। लेकिन तभी रूप गोस्वामी ने उनको जो है ना अपराधी माना और कहा कि वृंदावन से बाहर चले जाओ, है ना। तो फिर जीव गोस्वामी ने बहस नहीं की, किसी प्रकार का तर्क नहीं किया, है? और उनके आदेश से वो चले गए। कहाँ चले गए? नंद घाट। हाँ, जमुना जी की किनारे। कौन सा स्थान था वहां? एक गड्ढा था मगरमच्छ ने जो खोदा था, तो वहीं पर बैठ करके अपना भजन करते थे। और क्या खाते थे? आटा को जमुना जी के जल में घोल करके और पीते थे, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आटा को पानी में घोल के पियोगे तो फिर क्या रहेगा शरीर? तो बहुत खराब हो गया उनका शरीर। फिर सनातन गोस्वामी, हाँ, इसमें एक और घटना है। सनातन गोस्वामी जो है भिक्षा मांगते हुए उस स्थान में आए, तो उस स्थान में जो है ना एक घर में वो खड़े हुए, तो माता जी से कहा कि माता जी भिक्षा दीजिए। तो माता जी जो है ना थोड़ा देर लगा रही थी, तो उन्होंने फिर से कहा, वो समझे कि माता जी भूल गई, तो फिर से कहा कि माता जी भिक्षा दीजिए। तो माता जी जो है ना थोड़ा गुस्सा हुई और बोले कि बाबा तुझको जरा भी धैर्य नहीं है, एक बाबा तो यहाँ पर आता है वो बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप आटा लेके चला जाता है, तुमको तो धैर्य नहीं है। तो वो बोले कौन है वो बाबा? तो बोले वहां रहता है। तो सनातन गोस्वामी जब देखा जीव गोस्वामी की हालत बहुत खराब हो रही है, तो पहले तो रूप गोस्वामी के पास आए। रूप गोस्वामी से पूछा कि तुम्हारा जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है वो अभी कितना हो गया, तुमने लिखा है वो कितना अभी तक लिख लिया? तो रूप गोस्वामी बोले कि अभी तक पूरा हुआ नहीं है, अगर जीव होता तो अभी तक कब का पूरा हो गया होता। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि भक्ति में जो है कौन सा सिद्धांत है जो सबसे आवश्यक होता है? तो रूप गोस्वामी बोले कि जीव पर दया करना, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करना, नाम में रुचि लेना और जीव पर दया करना। तो सनातन गोस्वामी ने पकड़ लिया रूप गोस्वामी की इस बात को, बोले जीव पर दया करना, नहीं तुम्हारा जीव तो कष्ट पा रहा है। जीव पर दया करना चाहिए और तुम्हारा जीव कष्ट पा रहा है, अब तुम्हारी भक्ति कैसे होगी। तो रूप गोस्वामी बड़े दुखी हो गए। फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेके आते हैं, उनकी चिकित्सा कराते हैं, जीव गोस्वामी की चिकित्सा कराते हैं। इस प्रकार से जीव गोस्वामी फिर से रूप गोस्वामी की सेवा में आ गए। तब भक्ति रसामृत सिंधु ये पुस्तक भी पूरी हुई। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने जो है किसी प्रकार का जो है विरोध नहीं किया कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है ना। तो ये जीव गोस्वामी की विनम्रता है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी के बारे में हमने कुछ बातें सुनी है। और किसी को कुछ कहना है, आपने कुछ और भी बातें सुनी है, कोई बता सकते हैं? और क्या सुना आपने?
वैसे तो राधा दामोदर के जीव गोस्वामी का प्राण कृष्ण बलराम बता रहे हैं।
इनका प्रश्न है कि कृष्ण बलराम जीव गोस्वामी के प्राण धन है और राधा दामोदर है, तो फिर कौन से हैं? राधा दामोदर की सेवा करते थे जीव गोस्वामी वृंदावन में, और उसका भी कुछ घटना होगी कि वो कैसे उनको प्राप्त हुए। लेकिन कृष्ण बलराम के जो श्री विग्रह हैं उनको बचपन में प्राप्त हुए थे, तो वो सेवा करते थे, फिर तो वहीं पर छोड़ा है वो कृष्ण बलराम को, तो वो वहीं पर छोड़ा है, अपने गांव में छोड़ के आ गए और फिर वो जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी से फिर बनारस आए, बनारस से वृंदावन आए। फिर राधा दामोदर उनको कैसे प्राप्त हुए वो कुछ अलग घटना होगी, है ना। तो उनकी सेवा करते थे राधा दामोदर की। वास्तव में तो जीव गोस्वामी एक मंजरी हैं, जिनका वैसे कृष्ण बलराम से कोई संबंध नहीं है। जो मंजरी हैं उनका संबंध ना तो कृष्ण से है ना बलराम से, वो तो सीधा राधा रानी की सेवा करते हैं, है ना। लेकिन बचपन में वो कृष्ण बलराम की सेवा करते थे शिक्षा देने के लिए, सब जीवों को शिक्षा देने के लिए वो कृष्ण बलराम की सेवा करते थे। और कोई प्रश्न है? क्या आपने कुछ सुना है उसको बता सकते हो? और भी कई बातें हैं जो हमने अभी चर्चा नहीं की, आपने सुनी है, आप बता सकते हो और कुछ बात? जीव गोस्वामी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनका कुछ नाम? 25 पुस्तकें लिखी हैं, 5,00,000 श्लोक लिखे हैं, सत संदर्भ मुख्य है, और एक क्रम संदर्भ है, भागवत भक्ति का क्रम संदर्भ भी है, और सत संदर्भ में भागवत के सिद्धांतों का वर्णन है। और गोपाल चंपू उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, और 5,00,000 श्लोक जो है उन्होंने जो लिखे हैं। जीव गोस्वामी का एक और विशेष बात बताई जाती है कि उस समय जो है ना, मतलब ऐसी नोटबुक नहीं होती थी लिखने के लिए, जैसे आजकल नोटबुक आती ना तो एक पेज के बाद दूसरा पेज पलटते जाओ, वो तो ताड़पत्र होते थे, अलग अलग ताड़पत्र होते थे, और फिर वो लिखने के लिए पेन नहीं होते थे उस समय, उसमें स्याही और कलम होती थी। तो उसमें क्या था, जीव गोस्वामी जब लिखते थे तो फिर काफी देर तक सुखाने के लिए रखना पड़ता था कागज। अब कागज को काफी देर तक सुखाना है तो तब तक उसके पीछे लिख नहीं सकते, ताड़ पत्र के पीछे तब लिखेंगे जब पहले सूख जाए। तो जीव गोस्वामी क्या करते थे, उनके श्लोक मन में सब लिखे हुए हैं, तो उस पेज को छोड़ करके, क्योंकि अभी सूख रहा है ये पेज, तो इस पेज में जो श्लोक लिखे हैं तो उसके पीछे उनको कितना लिखना है वो सब उनके दिमाग में था, और अगले पेज में लिखना शुरू करते थे, और जब वो सूख जाए तो उसके पीछे जितना छोड़ दिया है वो लिखते थे। देखो पूरी पुस्तक उनके दिमाग में थी, इस पेज में कितना उनको लिखना है वो उनको पता है, और आगे का वो लिख रहे हैं। ऐसे जरा महान पुरुष है, कितने महान है जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी तिरुभावति थी महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्णा।